आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
इस वक्तव्य से हम ये समझ सकते हैं कि जिन स्थानों पर कर्म समय के कारण रहते हैं और जब उन नियमों को बदलते हैं तो और उनके सोचने की प्रक्रिया में क्या बदलाव आता है। साथ ही साथ जो ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है वह किस तरह से लेखक के बनने में अपनी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक लेखन जहाँ अपने असंतोष की अभिव्यक्ति देता है और एक नए समाज की रूपरेखा को प्रस्तावित करता है, वहीं कहीं ना कहीं वह लेखक को कवि को अकेला भी करता है और ये अकेलापन पूरे सिस्टम के सामने और पूरी वैचारिकी के सामने अपना जो अकेलापन वो कैसे लेखक को भीतर ही भीतर बदलता है, इसका एक उदाहरण देश करता है। अपनी एक कविता में कहते हैं, सच है तुम्हारे बिना जीवन अपंग है, लेकिन क्यों लगता है प्रेम अकेले होने का एक और ढंग है। प्रेम में भी जो कभी अकेला महसूस कर रहा है वो राजनीतिक लेखन, राजनीतिक कार्यवाही, समाज बदलने और समस्या संतोष की अभिव्यक्ति का जो भी लेखन है वहां के अकेलेपन को भी हम समझ सकते हैं। इस श्रृंखला में हमारे अगले वक्ता हैं श्री विनोद भारद्वाज जी। विनोद भारद्वाज कवि, उपन्यासकार, कला समीक्षक तो हैं। कलाकारों के लिए बहुत बड़े कलाकोश का, बेहद आधुनिक कलाकोश का संपादन किया है, गुरवाणी से आए वो बहुत अच्छे प्रकार के विमल वासु और उपन्यास और सरोज मुखर्जी पर उनके द्वारा निर्देशित फिल्म में चर्चित रही यादनामा के नाम से उनकी लॉकडाउन डायरी है जो कॉपर पॉइंट जैसे प्रकाशन से आई है। और अगर हम उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें तो 1948 में लखनऊ में जन्मे विनोद भारद्वाज हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में एमए किए और अपने समय की बहुचर्चित पत्रिका आरंभ के एक संपादक थे। लगता है मेरे ही बीच से जुड़े हुए थे आरंभ पत्रिका से और उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है अपने समय में। टाइम्स ऑफ इंडिया, सिग्मा, नवभारत टाइम्स, अनेक पत्रिकाओं और अखबारों में लगातार लेखन किया है विनोद भारद्वाज जी ने और बहुत सारे सम्मान उन्हें मिले हैं। और 1981 में उन्हें वर्ष की श्रेष्ठ कविता के लिए भारत भूषण पुरस्कार भी मिला था और इस साल के निर्णायक रूप में खड़े थे। 1982 में नामवर सिंह की अध्यक्षता की जूरी ने उन्हें श्रेष्ठ रचनात्मक लेखन के लिए संस्कृति पुरस्कार भी दिया था। तो देखते हैं कि विनोद जी का लेखन, फिल्म मेकिंग और बहुत सारी जो चीज़ें हैं कला के बहुत कई आयामों को वो छूते हैं और वहाँ जाकर अपनी बातें बहुत गहराई और लेखन से रखते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो श्रीकांत वर्मा जी पर अपनी बातें रखें। श्री विनोद भारद्वाज जी।
अध्यक्ष महोदय और मित्रों, नरेश जी के साथ ही मैंने अपना साहित्यिक जीवन उनके संपर्क में आते शुरू हुआ। श्रीकांत जी के मेरे बड़े उनके संस्मरण में बहुत थे, इसलिए कि मैं जब 18 साल का था तो मेरा उनसे पहला मुलाकात थी दिनमान कार्यालय। फिर बाद में मैं दिनमान में संपादकीय विभाग में आ गया 1974 से, तो उन दिनों श्रीकांत जी विशेष संवाददाता थे। तो वो बहुत थोड़े समय के लिए ऑफिस आते थे और वो 2 घंटे करीब अपने रिपोर्ट लिखा के फिर वो हमारी मेज पे आके प्रयाग जी मेरी बगल में बैठते थे। तो वो कुछ अपनी साहित्यिक बातें और जो भी लिटरेरी गॉसिप होता है उस पर हम लोग की काफ़ी दिलचस्प बातें हैं। श्रीकांत जी के साथ मैं बिलासपुर 2 बार आ चुका। एक बार उत्सव जो अशोक वाजपेयी के कार्यक्रम होते थे तो कविताएँ यहाँ पढ़ी जाती थी, 5 कवि पढ़ते थे। तो सौमित्र मोहन, मैं और श्रीकांत जी, हम 3 तो थे, 2 लोग और थे। तो वो मेरी पहली की यात्रा थी गुजरात से, वो करीब 80 के आसपास की बात है। अब मैं जाहिर है युवा कवि था और वो एक बहुत वरिष्ठ कवि थे। बाद में जब वो महामंत्री बन गए तो वो हम सब लोगों को लेकर बिलासपुर आए, 85 की बात है। और श्रीकांत जी बहुत मतलब उसके अंदर एक बात थी कि वो अपने बड़प्पन को आप पर लादते नहीं थे, या अपनी ग्रेटनेस को या अपने नाम को। मैं उनसे उम्र में 17 साल छोटा था, लेकिन वो ऐसे बात करते थे जैसे कोई दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। मतलब वो अपने कई कन्फेशन भी करते रहते थे बातचीत में, रघुवीर सहाय के बारे में या अगे के बारे में, क्योंकि दिनमान में वहाँ कई बड़े बड़े कवि एक साथ काम करते थे और श्रीकांत जी को कई प्रॉब्लम थी वहाँ पर, जैसे संपादक से उनका कोई संवाद ही नहीं था, जबकि विशेष संवाददाता थे और जिन दिनों में वहाँ था तब तो उनका कोई संवाद नहीं था मुझे। लेकिन फिर भी कवि के रूप में सभी का दर्जा था, सर्वेश्वर जी, रघुवीर जी और अग्गे जी तो उसमें जा चुके थे जब मैं आया था। तो 85 का जो मुझे इसलिए याद है कि वो उन दोनों वन मंत्री यादव जी यहाँ पर तो वन मंत्री थे, तो मुझे याद है कि राजीव गांधी फौरन वो काना किसरी गए थे, तो श्रीकांत जी ने मुझसे कहा कि काना किसरी चलना चाहिए हम लोगों को भी, और तो उनका एक सम्मान राजपथ में हुआ। फिर वहाँ से हम लोग सब, यहाँ फ्लाइट नहीं थी तो गाड़ी से आए थे यहाँ तक बिलासपुर में, उनका एक बहुत बड़ा पार्क में सम्मान हुआ था। और उसमें जो हम काना किसरी गए तो वन मंत्री यादव जी और मैं और श्रीकांत जी हम लोग एक ही हाथी पर, उन लोगों ने टाइगर को रोका हुआ था, क्योंकि वन मंत्री थे तो वे टाइगर को रुकना ही था, तो वो भालों से चारों तरफ से रुका हुआ था कि वो श्रीकांत जी को नजदीक से दिखाया जाए। तो हम लोग हाथी जो है लगभग टाइगर की बगल में जा करके उसको खड़ा कर दिया गया, वो थोड़ा झुका भी। तो रात को जब फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में जैसा होता है कि बातचीत, कॉकटेल बातचीत हुई, तो श्रीकांत जी बिल्कुल अपने वो महामंत्री मूड को भूल गए और उन्होंने बताया कि ये, अरे भाई ये टाइगर थोड़ा था वो, मतलब टाइगर ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो वो जो उनके अंदर एक सार्कास्टिक टोन भी रहती थी, अभी जैसा यहाँ पर जयप्रकाश जी वगैरह ये सब बातें कह रहे थे कविता के संदर्भ में, मुझे लगता है कि श्रीकांत जी और भूमि दो ऐसे कवि थे सिक्सटीज में जो सही मानों में अकवि थे, लेकिन अकवि पद के जो कवि जो जगदीश चतुर्वेदी या गंगा प्रसाद विमल या श्याम परमार, तो कुछ नहीं थे उनके सामने, क्योंकि एंटी पोइट्री का जो एलिमेंट है वो श्रीकांत वर्मा में सबसे अधिक स्ट्रांग था, बल्कि भूमि से भी अधिक स्ट्रांग था। भले उनमें नॉस्टैल्जिया भी है, जैसा ये घर धाम कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये माया दर्पण में छपी है, तो वो उनमें ये था कि बात है उस जमाने को अगर आप याद कीजिए तो दो लेखक यूरोप के बड़े लेखक राजनीति में आए, एक तो आंद्रे मालरो, वो चार्ल्स द गॉल के साथ जुड़े थे फ्रांस में और वो उनके यहाँ मंत्री भी गए, संस्कृति मंत्री भी बने थे और उन्होंने पेरिस की बिल्डिंग्स को सफाई करवा दी थी, और एक थे विली ब्रांड के साथ गुंटकड़ा, उन्होंने भी काफी मतलब जोड़ा था अपने को उनकी पार्टी से। तो वही दौर था जब श्रीकांत जी इन दोनों जब विशेष संवाददाता के रूप में वो वी फायर से उनकी बने नहीं, तो वो धीरे धीरे वहाँ जुड़ने लगे इंदिरा गांधी के साथ। तो 83 की बात है जिसमें एक बायोग्राफी लिखनी थी और उनके कविता के बारे में मुझे लिखना था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अशोक वाजपेयी को लिखना था, वो लिख नहीं पा रहे हैं, व्यस्त हैं, तो आप उसे लिखिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप 4-5 बार मुझसे मतलब मिलेंगे, मैं आपसे सवाल करूंगा, तब मैं लिखूंगा। बोले ठीक है। और मैंने जब लिखा, बहुत लंबी बायोग्राफी थी, छोटा जो एक ऐसी किताब थी कि बेसिकली बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन विद पोएटिक इनसाइट, तो मैंने वो लिखा और उनसे बात करके 3-4 बार लिखा, तो उसको उन्होंने पढ़कर मुझे लगा शायद ये कुछ जगह काट देंगे, जैसे इंदिरा गांधी और उनकी दादी के संबंधों पर मैंने जो उन्हीं से मालूम पड़ी थी बातें उस पर मैंने लिखा था, लेकिन उन्होंने कुछ काटा नहीं। मतलब वो उसको करीब करीब जैसा मैंने लिखा था वैसे ही जाने दिया। अब वो मैंने लिखा था 1983, आप सोच लीजिए 17-39 ईयर पुरानी बात है, और आज मैंने उसको अभी तक पढ़ा नहीं है दोबारा। लेकिन मैंने आने से पहले यहाँ मैंने सोचा कि यहाँ इन लोगों को पीठ को मैं वो ऐसा दस्तावेज है, श्रीकांत जी ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके टेक्स्ट को मैं मान के चल रहा हूँ जो भी बातें थी, तो उसका कुछ मैं यहाँ भी पढ़ता हूँ। और दूसरी बात जो मैं एक आरंभ में जब नरेश जी और मैं और जयकृष्ण हम लोगों ने आरंभ पत्रिका निकाली थी 67 में, तो उस समय बहुत चर्चा हुई थी कुछ चीज़ों की, उसमें एक अंक अकाल का था जिसपे श्रीकांत जी ने कविता लिखने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, बड़ी महत्वपूर्ण चिट्ठी है कि ये कोई द्विवेदी युगीन समस्या पूछ के नहीं है कविता रखना, और जबकि भूमिल ने ऋतुराज ने सबने अकाल की कविताएं भेजी अपनी, लेकिन श्रीकांत जी ने इनकार कर दिया। पर बाद में उन्होंने हमको एक अच्छी कविता भेजी जो कि जलसाघर में है। लेकिन आप देखिए राजनीति का असर कोई पर कैसे पड़ता है, इसमें तीन लाइनें इनके याद हैं उसकी जो ओरिजिनल आरंभ में छपी थी, उसमें एक लाइन जलसाघर में नहीं है। वो लाइन ये थी, रश लीड रिपीट, ये जर्नलिस्टिक लैंग्वेज है जैसा आप लोग जानते हैं, रश लीड रिपीट प्रधानमंत्री नेहरू नहीं रहे, ये तो एक आती है खबर। नीचे एक लाइन थी, जब तक रहे प्रधानमंत्री रहे। लेकिन वो संग्रह में आपको ये लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फिर दबाव आ गया। एक कवि भी दबाव का शिकार हो जाता है कि अगर मैं नेहरू के बारे में ये नजरिया रखूंगा तो शायद पार्टी से बहुत पसंद नहीं करे, तो ये सेल्फ सेंसरशिप है। तो कवि का अधिकार है, वो अपनी कविता को बदल नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि वो कविता मुझे बहुत अच्छी तरह याद थी, और लेकिन उन्होंने उसको बदला, और मुझे लगता है कि उनका जीवन असल में, मुझे ये भी लगता है कि अगर वो अमेरिका में बहुत जांच नहीं कराते तो शायद कुछ और साल बीते, क्योंकि वो जो एक बहुत ज़्यादा जांच कराने से उनको कई चीज़ें बहुत कुछ, जब वो पहली बार ऑपरेशन करा के आए थे अमेरिका से अपने हार्ट का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई 10 साल तक तो मैं सुरक्षित हूँ, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब वो चेकअप कराने गए तो उस चेकअप में जो है वो कहीं ना कहीं उनको दूसरा भोजन नली का कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो शायद एक गैप के बाद होता, क्योंकि कभी कभी अमेरिकन सिस्टम की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं ये नेगेटिव भी होती है। हम लोग कई बार उन लोगों के डॉक्टरों के चक्कर में आके अपना सहज जीवन भी खो देते हैं, तो उनका बड़ा अनफॉर्चुनेट डेथ हुई उनकी 86 में। और जब मैं उनके साथ यहाँ काना किसी की यात्रा की बात कर रहा हूँ तो 85 की बात है। लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ पर शहर अभी भी श्रीकांत वर्मा को याद कर रहा है, और उन्होंने मतलब उनके नाम से सड़क भी है और मूर्ति भी मैंने देखी, और उसमें अच्छा है कि उनके परिचय में साहित्य प्रकार लिखा हुआ, मतलब राजनेता नहीं लिखा हुआ है, उनको बेसिकली लिटरेरी उनका व्यक्तित्व था। और मैं समझता हूँ कि मेरे पास उनके इतने संस्करण है कि एक किताब लिखी आ सकती है, और मैं लेकिन उनकी ये जो जीवनी जो कि लगभग अब तो कोई शायद ये है भी नहीं, इसका कुछ मैं आपको इतना समय ऐसे बहुत बड़ी है लिखनी चाहिए, इसे परिचय के नाम से उस किताब में छपा था। एक तब विराटपुर की जनसंख्या कम थी, इसमें उसका जिक्र है। इसकी शुरुआत उनके कविता के लाइन से है, वर्षों बाद पता चला जो साथ थी छाया नहीं थी, मैंने बढ़कर जगह दी हरी सभा में, पास बैठ गई, सभा उठ चुकी है, अब भी जो साथ हैं छाया नहीं होते, अब भी जो साथ है छाया नहीं होते। श्रीकांत वर्मा का जन्म 18 सितंबर 1931 को बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, सुंदरों की बात है आज से 35 वर्ष पहले। आज बिलासपुर की जनसंख्या 1,00,000 होगी, एक स्त्री, लेकिन उस समय वहां की जनसंख्या 40-50 हजार रही होगी। पिता राजकिशोर वर्मा वकील थे, 1982 में 77-78 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। माँ सुमित्रा वर्मा निधन 1980 थी। विकास वर्मा भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके चार छोटे भाई और दो छोटी बहनें हैं। इनमें से दो भाई अब दिल्ली आ गए हैं, लेकिन दो भाई और दोनों बहनें बिलासपुर में हैं। यानी आज भी श्रीकांत वर्मा की पारिवारिक जड़ें बिलासपुर में हैं। श्रीकांत वर्मा का जन्म एक अच्छे खासे रईस परिवार में हुआ। तब उनका परिवार बिलासपुर के गिने चुने धनी परिवारों में से एक था। बाबू जमींदार के यहाँ दीवान थे और पिता भी बहुत से जमींदारियों के वकील थे। इसलिए घर में आर्थिक समृद्धि का वातावरण स्वाभाविक था। छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाके में उस समय धनी कहे जा सकने वाले परिवार संख्या में ज्यादा नहीं थे। इस वातावरण में श्रीकांत वर्मा को अपने बचपन में विशेष लाभ व्याप्त हुआ। उन्हें बड़े ठाट बाट में पाला गया था। बचपन में वो काफी बिगड़े हुए, जाहिर है कि खराब अर्थ नहीं, बच्चे थे। सुनक मिजाज, संवेदनशील और बड़ी जल्दी रूठ जाने वाले। बचपन में असाधारण दिखने की इच्छा बराबर रहती। उद्यमी स्वभाव था। बचपन में बहुत से उलम किए। अंतिम उलम साहित्य में रूपे। विकास वर्मा की प्रारंभिक स्मृतियां एक ऐसी हुई सफलता की। घर का बहुत बड़ा मकान था। उस घर की दीवारों के कहने की यादें। विकास वर्मा जब 8-10 साल के थे तो ये बड़ा घर बिक गया। परिवार कर्ज में डूब गया था। 20 साल की उम्र तक आते आते परिवार पूरी तरह से विपन्न हो चुका था। खुद श्रीकांत वर्मा को स्कूल मास्टरी करके अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। बचपन में श्रीकांत वर्मा पर अपनी दादी का बहुत असर रहा। घर में सबसे बड़ा बेटा होने के बावजूद अपनी माँ के बहुत नजदीक कभी नहीं रह पाया। आक्रामक और लड़ाकू किस्म की माँ के मुकाबले में ये सब उन्होंने मुझे बताया है। आप ये सोचिएगा कि मैंने आक्रमण किया, लड़ाकू किया, अधिक आकर्षित कर। दादी की समझ और धार्मिक संस्कारों ने श्रीकांत वर्मा पर गहरा असर डाला। धार्मिक संस्कारों के कारण किसी का बुरा करने को लेकर इच्छा भी हो तो मन में ऐसा रहता है, एक नरक जिसका अस्तित्व नहीं है फिर भी उसमें डर बना ही रहता है। श्रीकांत वर्मा जिस घर में पैदा हुए थे, शायद परिवार होने के कारण वहाँ खाने पीने की एक खास और समृद्ध परंपरा थी। दादी को छोड़कर घर में सभी मांस खाते थे। श्रीकांत वर्मा ने भी दादी के असर में मांस खाना छोड़ रखा था। उन पर बहुत दबाव डाला गया था। बचपन में उन्होंने मांस नहीं खाया। दादी का निधन जब हुआ तो श्रीकांत वर्मा 15-16 वर्ष के थे, लेकिन 25-26 वर्ष की उम्र तक उन्होंने मांस नहीं खाया। दादी के साथ वे बाकायदा मंदिर या रामायण पाठ आदि के धार्मिक आयोजनों में जाया करते थे। एक तरह की समझ और संस्कृति उन्हें अपनी दादी से बराबर मिलती रही। इसके विपरीत अपनी माँ में इस तरह की शिक्षा संस्कार उन्हें नहीं दिखते थे। दादी के गहरे प्रभाव के कारण श्रीकांत वर्मा बड़ी उम्र की स्त्रियों के प्रति हमेशा सम्मोहित रहे। ये एक लाइन से बहुत घर की स्त्रियों ने श्रीकांत वर्मा के व्यक्तित्व पर निर्णायक असर डाला। माँ के प्यारे दुलारे में कभी नहीं रहे, लेकिन दादी ने कमी को अच्छी तरह से पूरा किया। माँ से श्रीकांत वर्मा का संबंध थोड़ा असामान्य कही जा सकते हैं। माँ से उन्हें एक खास तरह की नफरत थी। माँ का त्याग ना पाना एक ट्रेजेडी थी, कोर्ट में है उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि उसकी वजह से मैं स्त्री से कभी स्वाभाविक संबंध ना बना पाया। एक उनका कंसेशन है, उन्हें दादी की उदारता ही नहीं आकर्षित करती बल्कि उनकी जुबान और शैली। माँ आक्रामक थी और आक्रामक पर श्रीकांत वर्मा को स्त्रियों ने कभी पसंद नहीं रही। श्रीकांत वर्मा पर बुआ का भी असर हुआ, जो जबलपुर में रहने के कारण बाहर की संस्कृति से उनके परिवार को जोड़ती थी। वर्षों बाद दिल्ली में जब श्रीकांत वर्मा विषम परिस्थितियों से जूझ रहे थे तो उन्हीं दिनों की मानसिकता का एक आत्मीय बल्कि कुछ कुछ खौफनाक परिचय देने वाली कविता समाधि लेख साप्ताहिक अभिमित कर। इस कविता के बारे में सुनकर माँ बहुत परेशान हुई और वे फौरन दिल्ली भी आई। शायद पहली बार माँ बेटे ने एक तरह का संवाद स्थापित किया, या शायद कविता की अद्भुत ताकत ने माँ को अपने बेटे की मानसिकता को पहचानने का मौका दिया। समाधि लेख को पढ़कर श्रीकांत वर्मा की माँ आतंकित हो गई थी। ये स्वाभाविक था। आज ये कविता मुझे भी आतंकित कर देती थी। माँ वैसे तो अशिक्षित थी, शायद कविता की चार के पंखे उनके दिमाग में चली गई। मुझसे आकर कहा, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। ये लाइन है उनकी, जो नींद में बच्चे चुप गाते हैं, माए जब जाती हैं, घर से निकाली हुई स्त्रियाँ द्वार खींचती हैं और द्वार नहीं खुलने पर बाहर से जाती हैं, मुझे से मिलाती हैं मेरी विफलता। श्रीकांत वर्मा एक अकेले किस्म के बच्चे थे, छोटे भाई से भी शक्ति नहीं थी, अपने को हीरो के रूप में देखते थे। मन में कुछ अद्वितीय करने की इच्छा है। बचपन में भगत सिंह तरीके सही क्रांतिकारी अधिक आकर्षित करते थे। अपने घर के वातावरण में श्रीकांत वर्मा को दादी के प्यार के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज हिंदी जुबान पर उर्दू की का जबरदस्त सुनो। तीन चार पीढ़ियों वाले पहले बिहार से बिलासपुर आकर बस गए, उनके शायद परिवार में उर्दू का गहरा असर था। चीजें जनाबे मन वकील साहब से शुरू होती थी, जिसने श्रीकांत वर्मा के भाषा संस्कारों पर निर्णायक असर डाला। उर्दू की वह बहुत मजबूत बैकग्राउंड के कारण आज मेरी बोली बहुत साफ है, ये उनका कथन है। इतनी उद्भव नहीं है, मैं गुमराह नहीं हो पाता। बचपन में श्रीकांत वर्मा पर एक अन्य बड़ा जबरदस्त असर था प्रकृति का, खासतौर पर जंगलों का। छत्तीसगढ़ के जंगलों और भीतरी इलाके गाँव जहाँ लोग हाथी और बैलगाड़ी के सहारे से पहुँच पाते थे, वे भटक कर उन्होंने अपने कवि को पहचाना। मध्य प्रदेश का लैंडस्केप जैसे भी बहुत प्रभावशाली है, प्रकृति वहाँ के जीवन में जैसे बहुत केंद्रीय महत्व रखती है। खासतौर से छत्तीसगढ़ में प्रकृति आपके आंगन का हिस्सा बन जाती है। आप जो भी रहे हों तो प्रकृति आपके स्वप्नों पर हमला कर देती है। भिलाई और कोरबा भी इस फिनोमिना को नहीं बदल पाएंगे। श्रीकांत वर्मा अपने इलाके की प्रकृति और जंगलों के इतने गहरे असर में रहे कि बाद में दिल्ली में आदमियों के जंगल में आकर उनके भीतर के कवि को गहरा धक्का लगा। भटका मेघ में प्रकृति और जंगलों का जो जादू और सम्मोह नजर आता है, वह 10-11 वर्ष के बाद के कविता संग्रह माया दर्शन में एक दूसरा रूप ले लेता है। दिल्ली में रहकर किसी के चर्चाएं जंगलों से बहुत दूर आ गए एक कवि की मानसिकता का चित्कार। एक ऐसे कवि जो पश्चिमी साहित्य को बहुत पैशन से पढ़ने लगा था। छत्तीसगढ़ में श्रीकांत वर्मा प्रकृति और जंगलों में खुशी थे। बड़े शहर से ने असामान्य किस्म का अतिवापन पैदा किया। स्वयं श्रीकांत वर्मा बात की अपनी कविता में एक आक्रामक किस्म का अतिवापन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में मैं बड़ा खुशी था, कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे वहाँ से बाहर आना। ये देखिए, वो ब्रजेंसकी की कविताओं का आरंभ में हम लोगों ने उन दोनों अनुवाद भी था उनका, उन्होंने बहुत अच्छे अनुवाद यूरोपीय पोइट लिखे थे। वो अचानक एक नेचर से एक आधुनिक कविता की दुनिया में आए। किताबों से श्रीकांत वर्मा को शुरू देखने का बचपन से 10-11 साल की उम्र में एक बाकायदा घरेलू किताबें खोल लिया था। चांद हंस सुधा सर की पुस्तकों से शुरू होकर मेरी पुरानी 250-300 किताबों का एक अच्छा खासा पुस्तकालय उन्हें बना दिया था। एक रुपये महीने का चंदा लेकर किताबें पढ़ने को किया करते थे। शरदचंद प्रेमचंद देखी रंजन सचिन तरीके लेकर कुछ पुस्तकालयों में शामिल थे। अब छिपा और ताऊ से आज तक जरूरत मिलती रहती। बनारस के किताबें यूपी से भी मंगा दिया करते। शुरू में स्कूल में श्रीकांत वर्मा को कोई खास आकर्षण नहीं था। अंग्रेजी स्कूल में बांटा गया था, तब साहबों के बच्चों का साथ पसंद नहीं आया। म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़े, हर तरह के दोस्त थे। स्कूल से भागने वाले लड़कों, आवारा और लोफर लड़कों का भी कुछ साथ रहा। स्वयं श्रीकांत वर्मा के अनुसार उन्हें वहम सा था कि वे आकर्षण का केंद्र बने रहे। मेरे दोस्त मेरी प्राप्ति करते थे, वे मेरे अहम को संतुष्ट करते थे। ये क्योंकि मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो इस तरह के कन्फेशन उन्होंने किए थे। कोई और कभी अपने बारे में इतनी चीजें नहीं छपने देता। बहुत सी इसमें ऐसी बातें जैसे मदर को लेकर कहा या अपनी दादी को लेकर कहा, इसे थोड़ा सा मुक्तिबोध से परिचय निकल हुआ। श्रीकांत वर्मा का मुक्तिबोध से परिचय इसी दौर में हुआ। 22 साल की उम्र अनिश्चित रामकृष्ण श्रीवास्तव जो स्वयं गीतकार थे, उन्हें नागपुर में मुक्तिबोध से परिचय करे। मित्रों नरेश मेहता और मुक्तिबोध नागपुर में। नरेश मेहता की उन दोनों की कविताओं से श्रीकांत वर्मा आकर्षित हुए। बाद में नरेश मेहता नागपुर से चले गए पर मुक्तिबोध से बराबर मिलना होता रहा। मुक्तिबोध में श्रीकांत वर्मा की 50-60 कविताएं लेकर पढ़ी। वे चकित भी हुए कि मध्य प्रदेश में प्रयोगवाद के विरुद्ध वातावरण में एक सभ्य का कवि आधुनिक कविता में कैसे रुचि ले रहा है। मुक्तिबोध को उम्मीद हुई भाषा भी बनी, एक साथी को मिला जो आधुनिक साहित्य गतिविधियों से वाकिफ है। ये इंतजाम का कथन है, बुद्धों की कविता ने आरंभ में मुझे थोड़ा सा आकर्षित किया, क्योंकि अब मैं उनके नजदीक पहुंचा तो उनके व्यक्तित्व में उनके व्यक्तित्व की एक भयानक गहरी काली आंच, ये मुझे ये उनका जो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगा था, इसको सह पाना कठिन था, ने मुझे खींचा। मतलब वो जो आंख की उनकी थी ब्लैक वाली थी और वो एक आपको साफ सजा कर रामकृष्ण श्रीवास्तव और स्वर्गीय के साथ मिलकर श्रीकांत वर्मा ने नई गीता के प्रवाह के साथ नवलेखन को समर्पित हुए साहित्य डॉक्टर सुभाषपुर और मध्य प्रदेश के पुरातन पंथी साहित्य एक चुनौती। पहले अंत में मुक्ति बोध में नई कविता में मध्यवर्गीय की साथ एक थी। तो ये क्योंकि इसमें बहुत से फैक्ट्स हैं, मैं इन बातों को एक तो उनके यहाँ के पटवारी और मुख्य को जोर देना चाह रहा था, और बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी वाले मामले को भी इस बात को स्वीकार किया था कि मेरी दादी का जो असर था वो मैंने तो इंदिरा गांधी ने देखा और उनके प्रति मेरा आकर्षण हुआ। और इसका मैं अंतिम हिस्सा आपको श्रीकांत जी में जो मुझे खास बात लगी कि वो अपनी मतलब इमेज को बनाने के लिए इवन राजनीति में जुड़े होने के बावजूद, और मैं समझता हूँ कि राजनीति ने भले उनको नाम सम्मान पर दिया, लेकिन वो मूलतः अपने कवि को, इसीलिए उनका संग्रह जो बाद में आया है इमरजेंसी के बाद, आप देख लीजिए मगध की कविताएं हैं, उसमें वो वही बात है जो कि एक कवि कहता है, वो ये नहीं है उसमें बहुत, क्योंकि मुझे याद है जब जनता दल की सरकार आ गई थी इमरजेंसी के खत्म होते ही तो श्रीकांत जी को नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिकों ने देखा कि हवा बदल गई है, तो उन्होंने उनको कहा कि अब आप उसको छोड़ दीजिए नौकरी। तो उस वक्त वो प्रयाग जी के पास आए, जब वो लौट कर आए तो प्रयाग जी के क्योंकि बहन जीजा जो गिरधर आती जाने वाने कवि, वो इमरजेंसी में वो उनको गिरफ्तार किया गया था और वो काफी डेढ़ दो साल वो तिहाड़ जेल में रहे। तो उस पर वो उन्होंने कुछ सिंपैथी से बात करनी चाहिए, लेकिन प्रयाग जी बहुत नाराज हो गए। तो बाद में वो मुझसे बहुत मतलब आकर के बोले कि देखिए मैं तो मतलब आखिर एक कवि होता है ना, तो वो अपने पॉलिटिकल लाइफ में देखिए बीजी ब्रांड की सरकार या उसकी ताज दगाल की सरकार तो भारत में नहीं थी, वहाँ आपको सीताराम केसरी के साथ एक कैश का लंबा वो भी लेके जाना पड़ता था, क्योंकि ये हमारे यहाँ की राजनीति ऐसी चलती है। लेकिन उसमें भी वो क्योंकि उनका कास्ट ने उनको धोखा दे दिया, वरना वो शायद उसमें भी सर्वाइव करते और कुछ उसी तरह का काम करते। वो अक्सर मुझसे ये कहते थे कि गरीबी हटाओ ये नारा मैंने ही दिया, और जाहिर है कि उस जमाने में वो राजीव गांधी भी उसको बहुत चाहने लगे थे क्योंकि उन्होंने उनके साथ काफ़ी काम किया था। और बिलासपुर में आकर मुझे बार बार उनकी इसलिए याद आ रही है, और ये जो हरधाम कविता है क्योंकि उसमें वो जो महुए के बन में कंडे पर मैं सुलगना चाहता हूँ, वो असली श्रीकांत वर्मा वही है।
धन्यवाद विनोद जी।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।